अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची लाहौर इस्लामाबाद भालपुर पिशावर से सियालकोट दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर गुड मॉर्निंग यार अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 16 रबीउल सानी 1443 हिजरी नवंबर की है 22 तारीख सन 2021 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील प्रोग्राम सनराइज विद अदील में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी बातें यहाँ की पसंद के म्यूजिक आप लोगों के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा और आप लोगों का अंदाजा होगा कि अभी तक कुछ मसला है आवाज के साथ। अल्लाह का शुक्र तबीयत वगैरह सब सेट है, एवरीथिंग इज गुड। वो जो एक लथार्जिक किसी कैफियत चल रही थी पिछले हफ्ते तक वो वाला सीन तो ऑफ हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा जरा सा इन्फ्लुएंस जो है वो जरूर है और सबका यही कहना है कि बेटा अपने टाइम से ही तो ये वायरस जाएगा और लग यही रहा है दिस वायरस इज एक्चुअली टेकिंग इट्स टाइम। तो टुडे विल बी द 7th डे, इनफैक्ट इट्स द 8th डे टुडे, सो होपफुली या इट्स वेनिंग। ये कमी की इस वक्त अपनी ढलान पे है, इट्स ऑन द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी बट वेल हियर वी आर। एनीवे प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। ओके, और मुझे आप लोग जरा ये भी कंफर्म करें आर यू गाइज एबल टू। ओके, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द ऑनलाइन स्ट्रीमिंग टुडे, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द इंटरनेट बिकॉज मेरा इंटरनेट जो है ना इस वक्त यहाँ पे स्टूडियो में चल नहीं रहा है। इसका मतलब ये, अगर यहाँ पे स्टूडियो में इंटरनेट चल नहीं रहा होता इसका मतलब ये कि हमें अपनी स्ट्रीमिंग को अप करने में जो है वो जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन खैर चलें जी अभी सिचुएशन या देयर इज सम प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो मैसेजेस जो हैं वो ओके, तो ये गाना जो है इश्क हुआ बर्बाद हुआ, नहीं क्या है मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इट इज ऑन द रिपीट लाइव राइट नाउ। सो ओके, ट्राइंग टू फिक्स दिस थिंग आउट। मैं जरा इंजीनियर बाबू से बात करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि सिचुएशन है क्या। अच्छा, अभी मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तफसील से बातें करेंगे। अभी जरा ब्रेक वे गाने वाने हमने सब सुन लिए हैं, आप लोगों के मैसेजेस भी जो हम लोग हैशटैग पे आप मुझे भेज रहे हैं सनराइज विद अदील वो भी अभी शामिल करते हैं, लेकिन जरा एक ब्रेक मिलते हैं। इन द मीनवाइल आई ट्राई टू अपने हम इंजीनियर बाबू को झंझोड़ते हैं कि जरा इस मसले को सॉल्व तो करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Yeah, welcome my guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं Sunrise Show with me Adil. Okay, so guys, we are stuck right now as far as the internet streaming is concerned, and that's a shame actually. जब भी नहीं चल रही होती इंटरनेट स्ट्रीमिंग मेरे लिए ज़ाती तौर से ये एक धचका होता है बिकॉज मैं बड़ी कोशिश कर करके आप लोगों को ऑनलाइन लेकर आया हूँ और जब ऑनलाइन नहीं चल रहा होता फिर दोबारा से आप लोगों को डायल पे आना होता है तो फिर इसमें प्रॉब्लम होती है। बट देन दीज आर मशीन्स, दीज आर टूल्स, मसले तो इसमें हो जाते हैं। अभी भी द टीम इज ट्राइंग टू फिक्स वट एवर वे दे कैन, लेट्स होप दे मैनेज टू डू इट। लेकिन बहरहाल एज दिस से द शो मस्ट गोज ऑन एंड हमारा शो चलता है जी। चलते हैं जल्दी से अपने आज के मैसेजेस पे हम नजर डालते हैं। आज का पहला मैसेज मुझे भेजा है जनाब मोहसिन अकबर साहब ने, गुड मॉर्निंग कहते हैं अदील भाई, थैंक यू सो मच। तहसीन अमजद साहब, थैंक यू मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। कहते हैं जी माई फैमिली इज लिसनिंग टू द शो इन जातली नियर गुजर खान, वी स्पीक पोटवारी लैंग्वेज एट होम, दैट इज कूल। ऑलराइट, बिल्कुल जी पोटवारी लैंग्वेज। हमारे एक बड़े अच्छे कॉलीग भी हैं, वो भी जो है ना गुजर खान के करीब एक गांव के हैं और वो भी पोटवारी लैंग्वेज ही बोलते हैं। ओके, यूसुफ नवाब साहब कहते हैं आदाब अर्ज़ है भाई, आदाब अर्ज़ है। रहमान खिलजी साहब, थैंक यू सो मच, आपने कोट शेयर किया है एंड द प्रॉपर फंक्शन ऑफ अ मैन इज टू लिव नॉट टू एग्जिस्ट, आई शैल नॉट वेस्ट माई टाइम इन ट्राइंग टू प्रोलोंग देम, आई शैल यूज माई टाइम। ऑलराइट, दैट इज ग्रेट, जबरदस्त। And then DJ Sumer साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। फजल फैजी साहब कहते हैं शाहीन आफरीदी अर्न क्लास इन गुड बॉलर्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट एटीट्यूड स्टिल ऑफ अ स्ट्रीट गाय, आई टोटली अग्री विद यू। उसने जो अफीस के साथ हरकत की है ना यार, शाहीन आफरीदी अभी तक तो हमारा राज दुलारा बना हुआ है ना, प्यारा बच्चा। अच्छा, अब शाहीन आफरीदी ना वो बच्चा नहीं है जिसने आज से 1.5 साल पहले पाकिस्तान सुपर लीग में डेब्यू किया था कि यार थोड़ा बहुत आउटबर्स्ट हो जाता है। I think it is about time that he starts showing some maturity. See, attitude is a different thing. Attitude is a different thing. लेकिन उठा के यूं करके बॉल मार देना, इससे पहले हमने इसका शाहिद आफरीदी अपना नहीं किसके साथ सरफराज के साथ भी हमने आउटबर्स्ट देखा है, तो वो होता ही है जरा थोड़ा सा ना। हमारे यहाँ बच्चों को जरा इज्जत जल्दी मिल जाती है तो इनको जरा हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेट्स रियली, देखिए ये सारे के सारे मसले जो है ना ये मेंटोरशिप के थ्रू हैंडल हो सकते हैं। बच्चों को इस बात का एहसास दिलाना है। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये असल में इतने पढ़े लिखे बैकग्राउंड के तो होते नहीं है, पढ़े लिखे बैकग्राउंड के हों या कम अज कम इतने ना भी पढ़े लिखे हों, लेकिन कम अज कम इस माहौल ऐसे माहौल में ग्रो अप हो रहे हों जहाँ पे वैल्यूज हों और जहाँ पे जरा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता हो, हिफ्ज़ मरातिब वगैरह और इन सारी चीज़ों का, कि जी अपने की इस सेम उम्र से किस तरह बात करनी है, छोटों से किस तरह, अब जब इस बैकग्राउंड से आप नहीं आए हो तो फर्क पड़ता है यार. एजुकेशन रियली मैटर्स, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस. अदरवाइज आपकी लर्निंग कर्व जो है ना वो ज्यादा होती है. तो उसके लिए आपको चाहिए होती है मेंटोरशिप. कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये जिम्मेदारी है कि शाहीन को किसी के साथ अटैच करें, ऑफ कोर्स हसन अली के साथ अटैच मत करना खुदा के लिए, लेकिन किसी ऐसे बंदे के साथ अटैच करें कि यार जिसके साथ तू जरा रह यार, इसके साथ स्पेंड टाइम इन हिज कंपनी एंड ऑल. एंड यार कोचिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस पे काम कर सकता है. सो अग्रेशन आप बैट्समैनों को बॉलें मार के शो नहीं करते, बैट्समैनों की आप जो है ना विकटें उड़ा के शो करते हैं, विच इज शाहीन डूइंग परफेक्टली वेल. लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आई मीन ही शुड नॉट डू इट, आई होप ही हैज लर्न द लेसन. देखिए ऑफ द फील्ड जाके उनको गले मिल देना ये वो सारी बातें, ये तो हाइंडसाइट वाली बातें ना यार. इन हाइंडसाइट आई थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग, बट व्हाट डू यू डू, योर बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट डू यू डू एट दैट मोमेंट. सो आई रियली होप ही लर्न्स, आई होप ही लर्न्स. ओके आसिम मंसूर साहब थैंक यू सो मच, कहते हैं योर टेक ऑन 150 बेसिस पॉइंट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इस पे हम आगे चल के प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे. पीर जहीद साहब थैंक यू सो मच जी, कल हमारे समराइज और समराइज ताज़ा दम सनराइज शो सब मिला के जो हमारे शोज रहे हैं पिछले 17 साल में उसके लिसनर्स का कल एक क्रिकेट मैच था यहाँ कराची में बफर जोन के मुकाम पर और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट बी देयर ड्यू टू सम कमिटमेंट्स एंड ऑल, लेकिन हुआ ये कि बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ यार और फाइनल जो था उसका वो टाई हो गया. आई मीन इट वेंट टू अ सुपर ओवर, लेकिन आई डोंट थिंक दैट हैड अ सुपर ओवर और समथिंग, सो द ट्रॉफी वॉज शेयर्ड, वुड यू इमेजिन. बट वेल डन गाइज, आई एम श्योर दैट मस्ट हैव बीन ग्रेट एंड सो बैड आई कुड नॉट अटेंडेड, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. फहीम अली खान साहब थैंक यू सो मच मेरे भाई, सबको बेस्ट विशेस कहते हैं. नजम साहब थैंक यू सो मच. डॉक्टर तायरुल्ला खान साहब, देयर सीम्स टू बी अ गुड चेंज इन बांग्लादेश पीपल टुवर्ड्स पाकिस्तान, मोदीज डीड. या मे बी दैट्स द थिंग, आई थिंक मोदी की स्पीच भी हो सकती है, मोदी की स्पीच नहीं, मोदी की डीड जो आपने बात की है. बांग्लादेश में एक सेगमेंट है जिसकी क्रिकेट के मामले में कम अज कम हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ हैं, बट इशू इज हसीना वाजिद. एक्चुअली मुझे याद है डॉक्टर साहब, 1990s की मैं बात कर रहा हूँ और अर्ली 2000s की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स मुझे ये बताते थे कि यार बांग्लादेश में क्रिकेट खेलना वाकई ऐसा होता था कि आप अपने होम ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए वहाँ पे इतनी इमेंस सपोर्ट जो है वो हुआ करती थी. नाउ 1990s का मतलब ये है कि अभी तो सकूत ढाका को 25 साल भी नहीं हुए हैं. ये जो इंडिया, माफ कीजिएगा, इंडियन इंस्पायर्ड शेख हसीना ने जो नैरेटिव सेट किया है पिछले कोई 15 साल में, एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव वाला, उससे जाहिर एक फर्क पड़ा है और उसका एक फर्क पड़ा है. लेकिन जाहिर है मेरे लिए भी ये प्लेजेंट सरप्राइज था, जाहिर है कि बांग्लादेश में है एक अभी भी एक प्रो पाकिस्तान, एटलीस्ट एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न वहां पे है. पोलिटिकली शायद वो हमसे अभी भी, क्योंकि जो हसीना वाजिद है वो इन जख्मों को भरने भी नहीं देगी, वो इनको कुरेदती रहेगी, वो उनको हरा रखने देगी, बिकॉज उससे वो पॉलिटिकल माइलेज हासिल करती है. नेशनलिज्म सेल्स मैन, नेशनलिज्म सेल्स रियली. बट या काफी सारे लोग बड़े हैरान हुए बांग्लादेश के ग्राउंड्स में पाकिस्तान को ये सपोर्ट देके और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इस बात का एक्नॉलेज करके देखते हुए. वकार अहमद साहब, मजारे काज साहब ने तस्वीरें भेजी हैं, सर वेलकम बैक, लॉन्ग टाइम, किधर थे आप. आतिफ इकबाल साहब कहते हैं हेडन ने कल कोई खास अनाउंसमेंट करनी थी, कुछ बताया. मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच के बैठ गया था कि पता नहीं मैट हेडन जो है ना, ये अनाउंसमेंट, वो अनाउंसमेंट, फलाना अनाउंसमेंट आने वाली है, कुछ होने वाला है. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट जो है ना बड़ी वाली कोई अभी तक हुई है. मैं चेक कर लेता हूँ, होती तो पता चल चुका होता अब तक कि पाकिस्तान के कोच अनाउंस हो गए हैं, बैटिंग कोच लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे, या फिर मुशर्रफ भाई सलाम हो गए हैं, मैथ्यू हेडन साहब मोहम्मद रिजवान के हाथों बैत कर लिया उन्होंने, लेकिन नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है. खैर एनीवे, उसामा सईद साहब रोजाना शेयर करते हैं लाहौर की फिजा की सूरत हाल, वहाँ का एटमोसफेयर आज भी हैजर्डस लेवल, वेरी अनहेल्दी लेवल पे आज, इनफैक्ट नॉट हैजर्डस, सो थोड़ा सा वैसे कम हुआ है. ये तो 400 कुछ हुआ करता था, अभी 261 है, इसका मतलब ये कि कुछ कमी हुई है. All right, then we have got Shamir and Azan, thank you. कहते हैं अदील अंकल, इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज 3-0, नॉट सरप्राइजिंग. ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश सीरीज इज इन द हैंड्स, इन आर हैंड, लेट्स सी इफ वी विल विन टुडे एंड इट्स गोना बी अ वाइट वॉश. इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, आप परेशानी की बात ना करें. लेकिन यार बांग्लादेश वालों को ना जरा थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा यार. यार ये जो विकेट बना रहे हैं ना बांग्लादेश वाले, यार कुछ समझ में नहीं आ रही बात यार. ये क्या किसकी खिदमत कर रहे हैं? इनको अपने आप से पूछनी पड़ेगी ये बात कि ऐसी विकेट बना के तुम क्या अपनी क्रिकेट की खिदमत कर रहे हो? नॉट एट ऑल. नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी क्रिकेट को ये, क्योंकि अपनी विकेटों पे तो चल जाएंगे ये, लेकिन फिर बाहर जा रहे हैं तो फिर इनके साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं ना. सो पाकिस्तान इन विकेटों को संभल गया, पकड़ लिया पाकिस्तान ने पेस इन विकेटों का. अब आप देख लीजिए क्या हो रहा है इनके साथ के, तो ये सही नहीं कर रहा है शामीर और आजान. इनको समझाओ जाके यार. मोहम्मद आसिम अखलाक साहब कहते हैं इंशाल्लाह वी विल क्लीन स्वीप, इंशाल्लाह वी विल क्लीन स्वीप इंशाल्लाह. डॉक्टर शैला थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई. आप लोग प्रोग्राम मेरा सुन नहीं पा रहे, मुझे अफसोस हो रहा है काफी सारे लोग, बिकॉज आज वेब स्ट्रीमिंग जो है वो चल नहीं रही है. तो भाई मैं माजरत खुआ हूँ उसके लिए. अब रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुन लीजिएगा आप लोग, मैं यही कहूंगा. वेरी सैड. ऑलराइट जी हाँ, इश्क के कलमे पे जो है ना वो फंसा हुआ है और इश्क का कलमा पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़ी जा रही है हमारी स्ट्रीमिंग जो है. अब्बास खान साहब ने भी ये बताया, मंजर मसूद साहब का भी यही कहना है, रहमान खिलजी जुल्फी बालाल महनाज इफ यू आर लिसनिंग टू मी गुड मॉर्निंग टू यू, आई एम डूइंग फाइन. रियाज उर रहमान साहब भी कहते हैं मन में बसी लोहान की लोबान की खुशबू, इश्क का कलमा याद हुआ. चलें जी रिपीट पे लगा हुआ है, क्या कर सकते हैं जी. मन में बसी लोबान की खुशबू इस वक्त सुना है, रिपीट पे हुआ है, क्या कर सकते हैं यार. मोहम्मद बकार साहब कहते हैं यूज योर माइंड टू सॉल्व प्रॉब्लम नॉट टू स्टोर देम. वाह जी. And then now we've got Rizwan Zaki. Assalamu alaikum Adil. Today we are unable to listen to you because all radio apps are hanged on Asrar Shah's song. Please do something to resolve the issue. Otherwise, our day will be boring. Okay. All right. Matthew Hayden has announced the launch of his cricket app. How boring, man. How boring. Man, kya ummeedein lagayi hui thi humne Matthew bhai se ki kya karne wale hain. Kam se kam aisa teaser na diya karo Matthew bhai. हम तो पता नहीं क्या समझ रहे थे यार, लेकिन खैर नाम भी सोच लिया था हमने तो मैथ्यू भाई के लिए, लेकिन खैर एनीवे. तारिक वहाब खानजादा साहब जो कि मुझे लग रहा है कि हमारा शो आजकल काफी रेगुलर सुन रहे हैं ओमान में, थैंक यू सो मच जी. कहते हैं बेस्ट विशेस टू माय लिटिल प्रिंसेस आमना तारिक फ्रॉम हर बाबा इन ओमान, दैट इज ग्रेट आमना इफ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग टू यू. एंड या व्हाट टू डू व्हाट टू से, इट्स प्रीटी सैड. एनीवे गाना सुन लेते हैं, मैं फिर जाके चेक करता हूँ कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है. लेकिन बहरहाल चलें जी आगे चल के जरा दुनिया के हवाले से भी बात करेंगे नेचुरली, जब हम अखबारात की खबरें वगैरह और खेलों के बाद निपटा चुके होंगे. आज जा रहे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज के हवाले से हम जो है वो काफी फुर्सत से बात करेंगे. और इसके अलावा या एक बार फिर से कोरोना सर उठा रहा है, और कोरोना जो ये सर उठा रहा है उसने यूरोप को अपना निशाना बनाया है, जिसमें ना सिर्फ नए नए लॉकडाउन लग रहे हैं बल्कि लॉकडाउन लगने के साथ हंगामे भी फूट पड़े. लेकिन इसका एक फायदा हो सकता है हमको और दुनिया को, वो क्या आगे चल के बात करते हैं. फिलहाल सुने ये खूबसूरत सा गाना, हमारे एक दोस्त बहुत दिनों से इस गाने की फरमाइश कर रहे थे. चलें जी, आई होप ही इज लिसनिंग टू द प्रोग्राम एंड ही इज नॉट अमंग दोस जो के वेब स्ट्रीमिंग पे प्रोग्राम सुनते हो. सो इफ ही इज लिसनिंग दिस इज जुनून, एंजॉय. मुख गए ने program, if you wish to participate, you can tweet me with the hashtag sunrise with Adil, one word. Aur aap mujhe Twitter pe follow kar sakte hain @Adil_Azhar, that's @Adil_Azhar. Acha guys, maine pata chala liya reason game hui kya. Acha game hui ye hai ki aaj subah jab main aa bhi raha tha to maine ye note kiya ki jaise hi main hamara jo main office hai Karachi ka busy district hai, like it's like the Wall Street of Karachi, that's where sort of where we live actually. Where we work from actually, not live. So, अब हुआ ये कि उसमें जो खंबे हैं ना के इलेक्ट्रिक के, उस पे दुनिया के हर तार लगा हुआ है. अजीब वाहियात और बेहंगम अंदाज से जो है ना वो तार लगी हुई होती हैं, जिसपे धूल अटी हुई होती है. I really don't know कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो डाला नहीं जाता. अभी कराची में एक कंपनी आई है जिसने अपने ऑप्टिक फाइबर की लाइनें वगैरह जो है ना वो डाली हैं, काफी प्रोफेशनल अंदाज से वो काम कर रही है. नाम नहीं लूंगा, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, बिकॉज़ अब तक उन्होंने एडवर्टाइजमेंट अपनी की भी नहीं है खास. लेकिन उसके अलावा बाकी क्या करते हैं लोग के इलेक्ट्रिक के खंभों पर जो है ना वो उनपे इनसार कर रहे होते हैं, उस पर अपनी जो है ना वो सेटिंग कर लेते हैं. अब वो हुआ ये कि उन्होंने यहाँ पे आज हफ्ता है कटाई मनाया जा रहा है, वो क्या वीकेंड ऑफ कटाई मनाया जा रहा है. तो अक्सर ऐसा होता है साल में एक दफा, दो साल में एक दफा जितनी भी तारे होती हैं वो सारी की सारी काट देते हैं के इलेक्ट्रिक वाले. तो आज अगर आप चुंदरीगढ़ रोड की तरफ आएंगे और चुंदरीगढ़ रोड से जो पैरेलल सड़कें हैं वहां पे जाएंगे तो इस वक्त सारी तारे पड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि तारों को जमा कर रहे हैं, जमा करने जा रहे वाले वो हैं जो ज्यादातर रीसेल मार्केट में जाके बेचेंगे, आई मीन वो लूटने वाले लोग हैं. तो आज यहाँ पे बहुत बड़े पैच पे जो जो तारों वाली इंटरनेट या यूज कर रहा है वो आज सारे इंटरनेट बंद हैं इधर. तो ये हमारे साथ आज ये सीन हुआ है. सो नथिंग टू डू विद आवर टीम, नथिंग रॉन्ग विद आवर इंटरनल इशू, दिस इज एन एक्सटर्नल इशू. अब ये जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनकी दौड़ लगेंगी और फिर इनका जो है ना वो गेम ऑन होगा. सो दैट इज द रीजन आई फिगर्ड दैट थिंग आउट. सो बहरहाल जी ये हो गई बात इसके हवाले से. ऑलराइट, अभी जो है वो सिचुएशन क्या होती है जी, सिचुएशन ये जल्दी से हम जरा बात करते हैं अब कुछ मजीद खबरों के हवाले से, देखते हैं जी क्या सिलसिला है. ओके जी, अच्छा जी, ओके. तो एक्सप्रेस ने आज जो सबसे ऊपर अपनी बनाई हुई है खबर वो ये कि सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो मेरी नहीं है, मुझसे मनसूब बातें की गई, ये खुद साख्ता और जाली वीडियो है. कल रात में आपको पता है कि ये एक वीडियो जो है गर्दिश कर रही थी और नून लीग से जो एफिलिएटेड जर्नलिस्ट हैं उनके अकाउंट से ये वीडियो जो है ये शेयर की गई है, ऑडियो शेयर की गई है, जिसमें साकिब निसार साहब बता रहे हैं कि उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, प्रेशर मुबैना तौर पर बोल रहे हैं साकिब निसार साहब ने जो है वो इस ऑडियो से लाताल्लुकी का जो है वो इजहार किया है. लेकिन जाहिर है आपको पता है इस वक्त साकिब निसार साहब को जीरो इन कर लिया गया है और उनके खिलाफ पहले वो नून लीग के जो है काफी नवाज शरीफ साहब के करीबी जज थे उन्होंने बयान दिया, अभी ऑडियो लीक हुई है और सुनने में आ रहा है कि देर आर मोर थिंग्स ऑन द पाइपलाइन. बिकॉज जाहिर है जो टारगेट किया जा रहा है वो साकिब निसार की शख्सियत को किया जा रहा है कि उन्होंने जाती अनाद और प्रेशर की बुनियाद पर जो है वो मियाँ साहब को जो है वो सजाएं दिलवाई थी, जबकि मियाँ साहब ने तो सारा के सारे सबूत और कतरी खत जो बिल्कुल जेन्युइन थे जाहिर है वीनो वो सब प्रेजेंट कर दिए थे. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. इमरान खान का कल ट्वीट आया, कहते हैं लैंड माफिया सियासी अशराफिया की मदद से 5,595 अरब की सरकारी जमीन पर काबिज है. यार ये मैंने कल ऐसी घर में बैठे हुए इमरान खान साहब का ट्वीट देखा, 5,595 अरब, जब मैंने इसको रुपये में कन्वर्ट किया तकरीबन कोई कह रहा हूँ कि 45-46 बिलियन डॉलर के करीब ये अमाउंट बन रहा था यार. वो कहते हैं जी लैंड माफिया इतनी बड़ी ज़मीन पर जो है ना वो कब्जा की हुई है, इन्होंने बेसिकली लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड जो है उसको कंप्यूटराइज किया जिससे जो है ना ये नतीजा निकल कर आया. तो ये बातें तो अपनी जगह सारी हैं खान साहब, इफ करने क्या वाले हैं दैट रिमेंस टू बी सीन. ठीक हो गया जी आगे बढ़ते हैं. शहबाज शरीफ साहब कहते हैं शरह सूद बढ़ाना अंधी हुकूमत का अंधाधुन इकदाम है. ठीक हो गया जी. पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट को असेंबली से जल्द मंजूर कराया जाए, वजीर आजम साहब ने जो ये हुक्म दिया है. कराची में मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी, शहरी परेशान हुए हैं. और इसके अलावा कल काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर बातें सुनाई दी गई आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसके अख्ताम में नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो की गई. काफी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप था बिकॉज वी ऑल नो नवाज शरीफ इज एन एब्सकॉन्डर, भागे में हैं वो पाकिस्तान से, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी शख्सियत के नाम पे होने वाली कॉन्फ्रेंस, हु ऑलवेज बिलीव्ड इन द रूल ऑफ लॉ एंड ऑल. लेकिन बाहर ज़ाहिर है आपको पता है कि वी नो कि कहाँ जा के सारी ये चीज़ें जो हैं कन्वर्ज हो जाती हैं. आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अच्छा जी फवाद चौधरी साहब ने जो है वो इस कॉन्फ्रेंस से पुल आउट कर गए थे. वो कहते हैं जी इस कॉन्फ्रेंस का अख्ताम मफरूर नवाज शरीफ की तकरीर से होना जो है वो तौहीन है. अच्छा जी इसके हवाले से कुछ हुकूमती अच्छा कहते हैं जी आसमा जहांगीर डॉन का लिखते हैं don.com का, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स कंडेम मजलिंग ऑफ नवाज़ स्पीच आफ्टर इंटरनेट कट. PMLN सुप्रीमो क्रिटिसाइजेस सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल वॉइसेस, कॉल्स फॉर नेशनल स्ट्रेटजी टू पुट आर हाउस इन ऑर्डर. ठीक हो गया जी, बड़ी इंटरेस्टिंग. पाकिस्तान में वैसे मजेदार बातें और दिलचस्प बातें होती रहती हैं, तो ये भी कल एक मजेदार बात जो है वो हुई है. 3 coal miners शॉट डेड इन बलोचिस्तान हरनाई एरिया. बलोचिस्तान में हम देख रहे हैं कि मुसलसल तवातुर के साथ जो है एक बार फिर से वायलेंस जो है वो जारी है और इस एक बार फिर से 3 बेचारे गरीब कानकुनों को जो है वो निशाना बनाया है दहशतगर्दों ने. सो अच्छा जी कहते हैं जी द अनआइडेंटिफाइड असेलेंट्स वन फ्रॉम कंधार अफगानिस्तान अकॉर्डिंग टू डेप्यूटी कमिश्नर. कहाँ से इनको पहुंचल गया जी, कंधार से वो आए थे, क्या हुआ था? और यार वो जब हमने बॉर्डर फेंस लगाई थी उसका क्या हुआ? वो तो मैंने सुना था ये रुक जाने थे उसके बाद से. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. व्हाट इज द अदर थिंग, IMF में अनवील स्टेप फॉर रिवाइवल ऑफ पैकेजेस टुडे. पाकिस्तान विल हैव टू मीट प्रायर एक्शंस फॉर द अप्रूवल बाय द फंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड. प्रोग्राम में जरूर बात करते हैं बिकॉज इकोनॉमी के हवाले से जिक्र आज रहेगा, इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ाए हैं, IMF का भी जिक्र जरूर रहेगा. बहरहाल अभी आपको हम लिए चलते हैं एक टाइम चेक और ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar, and good morning. आज हमारे जरा कम दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं because ज़ाहिर है मैं काफी ज़्यादा रोना धोना कर रहा हूँ इस लाइव स्ट्रीमिंग ना होने का. लेकिन मैं आपको वजह बता चुका हूँ. अगर किसी ने मेरी टीम को यहाँ पे मेरा FM पे ब्लेम किया ना इसके लिए तो फिर अच्छा नहीं होगा. बिकॉज मैंने वैसे ट्वीट भी कर दिया. अब लोग ट्वीट देख नहीं रहे हैं मेरा यार. लोग कह जा रहे हैं शो नहीं हो रहा, रिपीट पर लगा हुआ है. भाई देख लें, देखें इंटरनेट जो है ना वो तारे कट गई हैं. और यहाँ पे ना जहाँ पे हमारा ऑफिस है उधर यार ये मसला है, वो चलता रहता है उधर ये इशू. और हर थोड़े देर, लेकिन इतना साफ लग रहा है वो एरिया यार. सीरियसली यू गाइस हैव नो आइडिया. यानी यार मैं क्या बताऊँ आपको. काश कांट वी हैव इट लाइक दिस फॉर एवर. आई मीन कांट वी हैव दीज अंडरग्राउंड केबल्स फॉर वंस. अभी एक बहरिया टाउन के रहायशी ने बोला, आई मीन चेक द एरोगेंस ऑफ दिस गाय. Don't you have that means there is no concept of underground cabling in Karachi. यार there is no concept of underground cabling in Karachi. यार मैं छोड़ दो यार कि तो तुम इस्लामाबाद, तुम लोग प्लान्ड किस्म के शहर उठा के हमारा यहाँ से कैपिटल तुम वहां पे उधर बना लिया तुमने एक अपना F9 F10 11 उस पर तुमने वहां पे प्लान सोसाइटियां बना के. फिर ये जब कराची को ताने मिलते हैं ना तो भाई मेरा तो बिल्कुल पारा चढ़ जाता है बिल्कुल यार. पर नहीं, अंडरग्राउंड केबलिंग यार है बास जगहों पर है. अभी मैंने आपको बताया था कि एक ऑप्टिक फाइबर कंपनी यहाँ पर आई है जिसने अंडरग्राउंड केबल डाले. सीरियसली स्पीकिंग प्रोफेशनल काम हुआ हुआ लग रहा है उनका मुझे. बिकॉज मेरे घर भी जो ऑप्टिक फाइबर आता है ना वो महीने में एक दफा बंद हो जाता है. तो मैं पूछता हूँ भाई क्यों बंद हुआ. अच्छा बच्चों की जा रहे हैं इंटरनेट पे पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही है, बच्चे सर्च कर रहे हैं ये सारी चीजें. तो हमारे यहाँ अजीब एक ना एक भोचाल आ गया, बाबा इंटरनेट बंद कर दें, सर्विस ये चेंज करें फलाना. अब मैं फोन करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई क्या हो गया. कहते हैं सर वो खेल इलेक्ट्रिक वाले तार काट के चले गए. यार मैं यार तुम्हारे तार हैं या पता नहीं क्या चीज है यार, तुम लोग कोई परमानेंट डील कर लो ना कि इलेक्ट्रिक के साथ है. वो सर करते हैं सर, पता नहीं फिर भी काट देते हैं वो लोग. पता नहीं क्या सीन है यार. के इलेक्ट्रिक से चेक करूंगा मैं एक दिन. वहाँ के इलेक्ट्रिक में दोस्तियां निकल आई हैं, मैं चेक करूंगा कि ये मसला क्या है यार ये इस कंपनी के साथ. तो ये है प्रॉब्लम. अभी ये कंपनी अंडरग्राउंड केबलिंग के साथ आई है. लेट्स सी, आई होप दे रियली डू गुड. बट आज यहाँ ना चुंदरीगढ़ की जो पैरेलल सड़कें वो वहाँ पे काफी फिट गेम हुई हुई है. ऑलराइट जी, ग्रेट. बाकी क्या सीन है. बाकी ये सीन है भाई के एक सेकेंड. बाकी ये सीन है कि खेलों के हवाले से बात करते हैं. अच्छा खेलों के हवाले से आपको पता है कि जी आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है लॉट्स ऑफ क्रिकेट. अच्छी बात है, बहुत लॉट्स ऑफ क्रिकेट टेकिंग प्लेस दीज डेज. माशाल्लाह रौनक लग गई है टीवी पे, फिर से मजा आ रहा है. और अभी जो है ना सीन क्या है कि आज पाकिस्तान जो है वो क्या इशू आ गया यार ये. एक सेकेंड रुकेगा जरा प्लीज. इशू फिक्स्ड. पाकिस्तान और बांग्लादेश आज एक बार फिर से आपने सामने आएंगे. दिस ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी द थर्ड मैच. पाकिस्तान पहला जो T20 मैच था इट वेंट प्रीटी क्लोज. यानी एक मौके पे तो बांग्लादेश को ऐसा लगा कि बस मैच जीते ही जीते. और उन यार वैसे ये किस लेवल की कमेंट्री हो रही है यार ये बांग्लादेश टीवी पे. यानी अज़हर अली खान को क्या हो गया है. यानी ये आई वॉज अ रीजनेबल, आई एम नॉट सेइंग के कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई कमेंटेटर था. बासित खान लेवल का ज़ाहिर है वो उस कैटेगरी का कमेंटेटर था वो. और किस तरह ही कमेंट्री कर रहे हैं ये लोग यार. एक तो इतने पार्टिजान हैं बांग्लादेशी कमेंटेटर्स जो एक ज़माने में ना ये रॉबिन जैकमैन और ये टेवर्ट क्वार्क और ये खाया मजोला हुआ करते थे इधर साउथ अफ्रीका में. अजीब बायस किस्म की कमेंट्री चल रही है यार. वो शादाब ने इतना खूबसूरत कैच लिया. Well, he really, the batsman really played it into the hands of the bowler. Kons, kya baate kar rahe ho yaar? Usne full stretch. It's a superman catch that he has taken. What are you talking about? Yeah, man, I'm telling you, there is something seriously wrong. There is something seriously, seriously wrong with these Bangladesh commentary. They need to raise their standard, yaar. Okay, now coming back to that. Pakistan vs Bangladesh, aaj ye teesra match hone wala. Ye match bhi 1 baje hi hoga. Pakistan has got an opportunity to clean sweep. And which I'm pretty sure they will be able to. ज़ाहिर इस सीरीज़ में जो अब तक सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना बना है वो उनकी कमेंट्री नहीं बल्कि वहाँ की विकटें हैं. मुझे नहीं पता कि ये किसकी खिदमत कर रहा है बांग्लादेश इस तरह की विकटें बना के. ये तो बेचारे होम ट्रैक बुली भी नहीं बन पाएंगे इस तरह. बिकॉज बहरहाल आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे ही लग रही है कि अपने होम ग्राउंड में स्ट्रैंगल होल्ड करो टीमों को. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान जैसी टीम है जो कि स्पिन को या इन स्लो ट्रैक्स को निस्बती बेहतर तरीके से निगोशिएट कर पाती हैं उनके खिलाफ जो है ना फिर आप फंस जाएंगे. और अगर आप टेस्ट में भी यही हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे भी इनको मुश्किल हो सकती है. लेकिन बहरहाल वी डोंट नो व्हाट द स्ट्रेटजी एंड व्हाट द थॉट प्रोसेस इज, बट दीज विकेट्स आर नॉट कंड्यूसिव, दीज आर नॉट स्पोर्टिंग ट्रैक्स. इस पे आईसीसी को कोई ना कोई एक्शन जो है ना वो जरूर लेना चाहिए. अच्छा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच भी आज 1 बजे ही खेला जाएगा. इस सीरीज की अच्छी बात यह है, आई मीन वाकई एक जमाना था कि वी यूज टू क्रेव फॉर डे एंड नाइट क्रिकेट, और यार नाइट मैच आएगा, नाइट मैच, लेट 90s की बात कर रहा हूँ मैं, नई नई चीज लगती थी ना हमको. लेकिन यार ये जो है ना, अब सीन ये आ रहा है कि यार ये जो ड्यू वाला फैक्टर है उसको काउंटर करने के लिए ये बेस्ट चीज है. दूसरी जानब भाई न्यूजीलैंड की बहुत खिंचाई हो रही है इंडिया के हाथों, और ये क्लीन स्वीप हो गए हैं कल. और इसमें हुआ यही है कि पहला मैच तो फिर भी आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत फाइट हुई, लेकिन उसके बाद से जो है ना वो इंडिया ने न्यूजीलैंड को बिल्कुल जिसे कहते हैं उनकी गेम सेट मैच जो है ना वो कर दिया. और जो तीसरा T20 कल खेला गया, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट वाज द इजीएस्ट ऑफ द लॉट. इंडिया ने बैटिंग और बॉलिंग एंड ऑलराउंड कारकर्दगी की बुनियाद पे जो है ना वो इनको शिकस्त दी. पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 184 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे. उनके लिए जो टॉप स्कोरर रहे कप्तान रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने 31 गेंदों पे 56 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे. इसके अलावा ईशान किशन ने जो है वो 21 गेंदों पे 29 रन बनाए और ठीक हो गया जी. आखिर में छोटा मोटा कैमियो खेला हर्षल पटेल और दीपक चौहान ने. अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की बैटिंग की तो देयर वाज जस्ट वन नेम, मार्टिन गप्टिल. ऐसा लग रहा है मार्टिन गप्टिल के अलावा कोई और खास खेलने के मूड में लग नहीं रहा था. ये भी याद रहे यार, न्यूजीलैंड टीम हैज बीन ऑन द रोड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और एक बहुत लंबी. इंडिया तो फारिग जल्दी वर्ल्ड कप से हो गया था, उनको तो ज्यादा कोई टेंशन वेंशन थी नहीं, बट न्यूजीलैंड वाज हैज बीन ऑन द रोड, दे हैव बीन इन द बबल फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. सो इट्स बीन वो कोई इंटेंट, अगर आपने न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज भी देखी हो, कोई ऐसी खास इंटेंट नजर नहीं आ रही थी कि यार दे आर रियली इन द मूड ऑफ लाइक इवन पुटिंग अप अ मैच, एक्सेप्ट फॉर मार्टिन गप्टिल जिसने 36 गेंदों पे 51 रन बनाए. देयर वाज नॉट अ सिंगल नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन. न्यूजीलैंड की पूरी टीम 111 रन पर जो है वो आउट हुई. अक्षर पटेल ने 3 विकेटें हासिल की. ही वॉज एडजस्ट मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है वो रोहित शर्मा को गया बहैसियत फुल टाइम कप्तान. इनका पहली सीरीज जिसमें उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज भी हासिल किया. सो ब्रिलियंट फॉर देम. याद रहे जी, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो ये सीरीज है इसमें 2 टेस्ट मैचेस भी होने हैं और पहला टेस्ट मैच जो है ये कानपुर में खेला जाएगा. 25 नवंबर से जो है वो इसका आगाज हो रहा होगा. पाकिस्तान का टेस्ट मैच 26 से बाय द वे स्टार्ट हो रहा है. ऑलराइट, बाकी सिचुएशन क्या है? बाकी सिचुएशन जो है वो ये है कि जल्दी से जाते थे फुटबॉल के हवाले से बात कर लेते हैं. लॉट्स ऑफ फुटबॉल बीइंग प्लेड ओवर दिस वीकेंड. आर्सेनल को 4-0 से शिकस्त हुई एट एनफील्ड. कहते हैं ना कि सूरज मशरक से निकलता है, तो आर्सेनल जो है वो भी 4-0 लिवरपूल से हारता है एनफील्ड में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी. तमाम बड़े रिजल्ट अगर आप देखें, मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-1 से माशाल्लाह वॉटफोर्ड के हाथों शिकस्त हुई उनको. और उसका फिर मैं तो कहूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले तो हम जो उनके सपोर्टर्स हैं वो तो काफी खुश होंगे इस रिजल्ट से, बिकॉज ओले गुनर सोलशायर का जो एक काफी टर्बुलेंट सा एक छोटा सा बीच में उसने स्पार्क जरूर दिखाया था सोलशायर का जो जमाना था कि यार ऐसा लग रहा है कि इसने टीम सेट कर ली अपनी, लेकिन नहीं, ये टैपर्ड ऑफ प्रीटी सून. और सिर्फ रोनाल्डो की बुनियाद पर तो आप मैचेस नहीं जीत सकते ना. वो रोनाल्डो भी अब गोल नहीं हो रहा है ना, जो एक शुरू में ऐसे मर्जी से गोल कर रहा था वो अपने. 4-1 से उनको शिकस्त हुई अगेंस्ट वॉटफोर्ड एंड ओले गुनर सोलशायर इज गॉन नाउ. और अब इनका नया मैनेजर कौन आएगा, अब ये दैट रिमेंस टू बी सीन. ज़िनेडीन ज़िदान के हवाले से बातें आ रही हैं, लेकिन सुना है ज़िदान ने ये कहा है कि वो जुलाई तक कोई असाइनमेंट नहीं लेंगे, ही जस्ट नीड्स अ ब्रेक. बहरहाल जी, हर ब्रेक की एक कीमत होती है. मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बहुत अमीर क्लब है एंड आई एम प्रीटी श्योर दे विल पे अ वेरी गुड प्राइस फॉर हिम टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीटी सून. लेट्स सी वेदर ही डज इट और नॉट. एक और जो उम्मीदवार थे एज अ मैनेजर ज्वाइन करने के मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंटोनियो कोंते, उन्होंने ज्वाइन कर लिया टॉटनम हॉटस्पर्स और हमारे दुश्मन क्लब. और हुआ ये कि कल पहले ही मैच में भाई उन्होंने तो अच्छा कमबैक कर लिया यार. अच्छा खासा लीड्स खेल रहा था और मैंने हाफ टाइम तक मैच देखा था, और हाफ टाइम में देख के मैं सुकून के साथ हो गया था. मैंने कहा यार ये तो लग रहा है टॉटनम हारा ये गेम. लेकिन बहरहाल दे वन इट 2-1 और ये 58 और 69 मिनट पे जो है ना उन्होंने गोल स्कोर किए. सो एंटोनियो कोंटे इज ऑफ टू अ विनिंग स्टार्ट देयर एंड ठीक हो गया जी. स्पर्स जो है अभी भी पीछे हैं थोड़ा सा, बट पहले हाफ में स्पर्स वाकई अच्छा नहीं, वाकई वो दे प्लेड रियली वेल इन द सेकंड हाफ. आई एम जस्ट चेकिंग आउट द स्टैट्स राइट नाउ कि पहले हाफ में तो लीड्स वर डोमिनेटिंग द गेम मैन, इट वाज सीरियसली. बट बहरहाल लेट्स सी, दैट्स द थिंग. ओके, सो दीस वर द फुटबॉल स्कोर्स. बाकी अभी अब रुक जाते हैं, और मैन सिटी भी कल जीता है, ठीक है. कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम एज वेल. कल के अभी फिलहाल ये स्कोर्स हैं, अभी ब्रेक के जाने पड़ते हैं, उसके बाद एक गाना सुनेंगे फिर वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, एमाजॉन जेब एज ऑलवेज ब्रिलियंट. दैट वाज आज की रात ना जाए अब्रप्ट एंड टू द सॉन्ग. सो व्हाट्स द सीन नाउ? द सीन इज दैट ऑलराइट, जरा अभी बात करते हैं. पहले हम लेट्स टॉक अबाउट कोविड. कोविड का जिक्र आजकल जरा प्रोग्राम में जो है ना वो काफी ज्यादा कम हो गया है. तो ज़ाहिर है अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है माशाल्लाह वी हैव बीन डूइंग वेल एंड फाइन. दुनिया भी जनरली अच्छा ही कर रही थी, लेकिन कोविड एक बार फिर से उसके जो इन्फेक्शन है द केसेस आर राइजिंग स्पेशली इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के हम खास तौर से बात कर रहे हैं इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज के हवाले से. उसमें भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इस वक्त एक बार फिर से वहां पे कोविड का जो है वो रिसर्जेंस हुआ है. जाहिर है मौसम भी तब्दील हुआ है, सर्दियां भी आ गई हैं. आपको पता है सर्दियां वैसे ही कंड्यूसिव होती हैं फ्लू के वायरसेस वगैरह के लिए, लेकिन कोविड का जो ये निशाना बन रहे हैं स्पेशली वो लोग हैं वो आर अनवैक्सीनेटेड और जिनको वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हुई भी है. और दो तीन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ने वो यूरोप का पहला, यूरोपियन यूनियन का पहला मुल्क बन गया है जिसने मैंडेटरी कर दिया है फॉर एवरीवन फ्रॉम फरवरी के उनको वैक्सीन लगवानी है. इसके अलावा अभी पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ऑस्ट्रिया ने अनाउंस ये किया था दैट दे आर ब्रिंगिंग इन अ लॉकडाउन फॉर द अनवैक्सीनेटेड, यानी जिन्होंने वैक्सीनेट अपने आप को नहीं कराया हुआ है वो एक्सेप्ट फॉर द एसेंशियल सर्विसेज बाहर नहीं निकल पाएंगे. हाउएवर थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, ऑस्ट्रिया इज रीइंपोजिंग द लॉकडाउन फॉर एवरीवन. वो एक बार फिर से जो है वो लॉकडाउन लेकर आ रहे हैं. दिस इज अ डिजास्टर, डिजास्टरस न्यूज फॉर देयर इकोनॉमी बिकॉज ऑस्ट्रिया जो है, देखिए मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, मैं ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूँ. ऑस्ट्राइक वियना वाला जो है ना मुल्क, ओके, वो इट्स अ वेरी पॉपुलर विंटर ट्रेवल डेस्टिनेशन, यानी जो सरमाई छुट्टियां लोग मनाने जाते हैं स्कीइंग हॉलीडे के लिए जाते हैं, स्की हॉलीडे के लिए, उसके लिए ऑस्ट्रिया एक बड़ी पॉपुलर जगह है. ऑस्ट्रिया ने इनफैक्ट दुनिया के टॉप स्कीयर्स जो हैं, डाउनहिल स्कीयर्स जो हैं, बात कहीं से कहीं चली जाएगी, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में हरमान मायर जो हैं वो आ रहे हैं, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट एथलीट्स व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन 90s, बेहतरीन डाउनहिल स्कीयर जो है वो बंदा हुआ करता था. सो वहां पे दुनिया के टॉप स्की स्लोप्स जो हैं वो आपको ऑस्ट्रिया में मिलेंगे. सो दे वर वेरी होपफुल, पिछले साल तो उनका सीजन तबाह हो गया था, इस बार दे वर गियरिंग अप वेल 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 के जी अब टूरिस्ट आना शुरू होंगे. नाउ व्हाट, सडनली देयर इज अ लॉकडाउन अगेन. सिमिलरली नेदरलैंड्स, सेम सिचुएशन, एक बार फिर से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं. बेल्जियम, एक बार फिर से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं. दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ लॉकडाउन. गवर्नमेंट ने जो है वो लॉकडाउन, नॉट स्पेसिफिकली एंटायर लॉकडाउन, बट गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी शुरू कर दी हैं. नाउ उस पे हुआ ये है दैट बेल्जियम और नेदरलैंड्स में कल बाकायदा फसादात फूट पड़े और सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ आवाम जो है स्पेशली बिजनेसमैन वो सड़कों पर निकले. वो एक पुरअमन एहतजाज कल बेल्जियम में होना था और वो इट टर्न वॉयलेंट. तो उसमें जो है वॉयलेंट जो हुआ वो जी तोड़ फोड़ आग लगा दी ये हुआ. उससे एक दिन पहले इस वीकेंड में नेदरलैंड्स में जो है वो काफी फसादात हुए. पीपल आर फेड अप नाउ, लोग अब इन रिस्ट्रिक्शन से जो है ना वो परेशान हो गए. अब इससे हो ये रहा है, इससे हो ये रहा है कि बहुत सारे ममालिक जिनसे एक्सपेक्टेशन थी कि जी उनकी इकोनॉमीज यूरोप में खासतौर से उनकी इकोनॉमीज एक बार फिर से ग्रो होना शुरू होंगी, वहां पे कुछ ब्रेकें जो है वो जरूर लगेंगी. जर्मनी इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम, वहां पे भी कोविड का रिसर्जेंस जो है वो देखने में आया है अभी. सो वहां पे भी कुछ उनकी जो इकोनॉमिक कमबैक की जो एक्सपेक्टेशंस थी ब्रॉडर यूरोपियन यूनियन में, वहां पे कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन लो हुई है. अच्छा, इसका जो है ना वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अब ऐसा लग रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस पे भी. कमोडिटी प्राइसेस वैसे भी अगर आप दुनिया भर में देखेंगे पिछले जब से ये नवंबर का महीना शुरू हुआ है उसमें बढ़ोतरी वो नजर नहीं आ रही है जो आपने सितंबर और अक्टूबर में जो खौफनाक और होशरुबा इजाफा देखा था. मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं ऑयल प्राइसेस के हवाले से, सो ऑयल प्राइसेस अपनी मैक्सिमम से तकरीबन कोई $8 to $9 जो है वो कम हो गई हैं और उसका जो है उसका बेनिफिट हम जैसे मुल्कों को मिल सकता है. नॉट इमीजिएटली, डोंट एक्सपेक्ट. अच्छा, बिकॉज इस वक्त जो है वो मैं देख सकता हूँ कि WTI क्रूड, यानी जो अमेरिकन मार्केट में जो उनकी मेन टेक्सस की मार्केट है उसमें जो ऑयल है वो इस वक्त ट्रेड हो रहा है 75.63 का. नाउ ये वो ऑयल है जो कि आपसे कुछ अरसा पहले, कुछ हफ्ते पहले ये 83-84 के लेवल पे, बल्कि 85 तक इसने जो है वो ब्रीच किया था. अभी ये आ गया 75.76 पे जो है ना कम से कम ये बैठा हुआ है. सो दिस इज गुड न्यूज स्लाइटली फॉर पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए. लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस गवर्नमेंट जो है वो इमीडिएटली कम कर देगी तो ऐसा नहीं होगा. बिकॉज इसका जो है वो ऑयल की प्राइसेस गवर्नमेंट ने अपने जीएसटी को रिड्यूस किया था ना यार, सही है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी थी उन्होंने, लेकिन अपना जीएसटी भी तो जीरो पे ले आए थे, अब गवर्नमेंट अपना जीएसटी भी तो रिकवर करना शुरू करेगी. सो डोंट एक्सपेक्ट एनी इंस्टेंट रिलीफ, बट यू नेवर नो, इमरान खान साहब अगर बहुत दयालु मूड में आए तो एक हफ्ते में हो सकता है वो आपको रिलीफ भी दे दें, अगर ये प्राइसेस जो है वो ऐसे ही चलती रही. बाय द वे टॉकिंग अबाउट आईएमएफ, अब से कुछ मिनट पहले आईएमएफ की जानिब से एक स्टेटमेंट रिलीज हो गई है पाकिस्तान के प्रोग्राम के हवाले से. 6 weeks ऑफ इंटेंस नेगोशिएशन के बाद बिलाखिर आईएमएफ हैज शोन द कंसेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी कर दी है. अभी ब्रेक से वापस आके अब जरा हम तफसील से बात करेंगे, आज जरा इकोनॉमिक्स के हवाले से जरा बातों का थोड़ा ओवरडोज मुझे लग रहा है हो जाएगा. सो लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक जितने हम लोग एंजॉय करेंगे इसको, ठीक है. या वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. और ब्रेक में जाने से पहले हमने तफसील से बात की थी, आईएमएफ ने आपसे थोड़ी देर पहले ही अपनी ये प्रेस रिलीज जो है वो रिलीज की है कि उनका स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आईएमएफ की जो पाकिस्तान टीम है उनके दरमियान अग्रीमेंट जो है वो हो गए हैं. एंड इट इज अ गुड न्यूज बिकॉज पाकिस्तान नीड्स आईएमएफ फॉर नाउ. एंड हमने थोड़ी सी बात की थी कि पीकेआर में और स्टॉक मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट को आज जो चीज नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है वो इंटरेस्ट रेट का इजाफा. गवर्नमेंट ऑफ, माफ कीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड एक काफी बड़ा इजाफा किया है इन वन गो. नाउ एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि जो स्टेट बैंक का इजाफा होगा वो 75 बेसिस पॉइंट से लेकर 1% तक होगा, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक ही गो में 1.5% इजाफा किया है. सो व्हाट वी कैन से, और इनफैक्ट अच्छा ये आईएमएफ की मैंने ना अभी स्टेटमेंट काफी हद तक पढ़ी है और इसमें उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी, पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक जो हालात हैं, इन चीज़ों के हवाले से अपने बड़ी तारीफी कलमात जो हैं वो अदा किए हैं और कहा यही है कि पाकिस्तान ने पोस्ट पेंडेमिक अपने आप को जो है बड़ा जबरदस्त रिकवर किया है एंड द इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बियॉन्ड 4% इन 2022 एंड मोर देन दैट इन द कमिंग ईयर. सो आईएमएफ थिंक्स दैट पाकिस्तान इकोनॉमी इज ऑन द राइट ट्रैक. यस देयर आर हेडविंड्स जो हम फेस कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, दुनिया के काफी सारे ममालिक हमारे जैसे मिलते जुलते जो मुल्क हैं वो ये फेस कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के हवाले से भी आईएमएफ का ये कहना है कि अगले साल के शुरू से ये स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, ये नंबर कम होना शुरू हो जाएगा. देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी कि स्टेट बैंक को मजीद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की जरूरत ना पड़े. हाउएवर ये बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, ये एक बहुत तफसीली गुफ्तगू है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहरहाल 1.5% से बढ़ा है और ये एक हम ये कहेंगे कि फाइनली वो जो पिछले तकरीबन को 1.5 साल से एक मॉनेटरी ईजिंग का एक दौर जो चल रहा था, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सपोर्ट कर रहा था यहाँ पे, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था बिजनेसेस को, इकोनॉमी को थ्रू डिफरेंट इंसेंटिव एंड ऑल, जिसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो उन्होंने दिया था वो इंटरेस्ट रेट को ड्रेस्टिकली रिड्यूस करके दिया था, दैट हैड अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. लेकिन उसका जाहिर है कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पे, बिकॉज जाहिर है बड़ी कंपनियों ने कर्जा लिया हुआ होता है जिसपे वो इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, ये सारे के सारे ज्यादातर वेरिएबल लोन्स होते हैं जो कि काइबोर के साथ लिंक्ड हुए हुए होते हैं. सो अच्छा उसके अलावा ये भी हुआ था कि बैंकों के कर्जे बहुत सस्ते हो गए थे, तो गाड़ियों की फाइनेंसिंग वगैरह बहुत आम हो गई थी, मॉर्गेज के लोन्स जो हैं वो भी काफी सस्ते हो गए थे. सो पीपल वर गोइंग आउट देयर एंड दे वर बाइंग कार्स, जिसको देखो नई गाड़ी में घूम रहा है, यानी आप हैरान रह जाते थे यार इसने भी गाड़ी ले ली, उसने भी ले ली, क्या ली जी बैंक से फाइनेंसिंग, ये वो बहुत अच्छा रेट मिल गया मुझे. बैंकों ने अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाके जो है वो फाइनेंसिंग की थी, कंपनियां जो है वो लीजों पर गाड़ियां ले रही हैं अपने स्टाफ के लिए एंड ऑल बिकॉज द इंटरेस्ट रेट हैड गॉन टू लो. नाउ स्टेट बैंक हैज सेड बस, अब हो गई पार्टी, हो गया जी, चलो जी अब बंद करो ये पार्टी, आ जाओ बंद करो. उन्होंने कहा जी इस रेट को बढ़ाना शुरू करें. वैसे थोड़ा सा ना यहाँ पे डॉक्टर साहब की क्रेडिबिलिटी हिट हुई है, बिकॉज वो फॉरवर्ड गाइडेंस और फॉरवर्ड गाइडेंस की बातें करते थे, उनकी पिछली फॉरवर्ड गाइडेंस हमें लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें आईएमएफ का भी एक सर्टन प्रेशर होगा. आई मीन इत्तेफाक की बात है ना, फ्राइडे नाइट को इंटरेस्ट रेट शाम को वो बढ़ाते हैं और मंडे मॉर्निंग को आईएमएफ का स्टेटमेंट आ जाता है. आईएमएफ वेट कर रहा था, देखो या कीप एन आई ऑन दीस गाइस मैन, यू नेवर नो व्हाट दे मे कम अप विद. सो हुआ यही कि उन्होंने जो है ना वो 1.5% बढ़ा दिया. अच्छा अब क्या हुआ है कि तरह थोड़े से ब्रेक लगेंगे इकोनॉमी को, ठीक है. तो वो हमारे जो दोस्त जो कह रहे थे कि यार इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो बाय ओवर 5% एंड ऑल, नो आई थिंक वन थिंग इज सर्टन, नो इट इज गोइंग टू रिमेन बिटवीन 4-5% समवेयर, कहीं इसके आसपास ही जो है वो आपकी जीडीपी ग्रोथ रहेगी. लेकिन जो मकसद था वो ये था कि इकोनॉमी में एक ओवर हीटिंग की सी सिचुएशन डेवलप हो रही थी. नाउ ये ओवर हीटिंग का जो लव इस्तेमाल हो रहा होता है वो तब इस्तेमाल होता है जब मुल्क में डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, यानी जो लोग चीज डिमांड कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रियां चीजें डिमांड कर रही होती है, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा होता है. इतना इजाफा हो रहा होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो आप जो चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आप उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है जी. तो लोग प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है ना, मैं डिमांड ज्यादा कर रहा हूँ, सप्लाई कम है, एक ओवर हीटिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है. सो उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है, उससे महंगाई बढ़ती है. बेसिक इकोनॉमिक के रूल्स हैं जाहिर है ये चीजें. सो स्टेट बैंक अब कोशिश ये कर रहा है कि जरा सा जो है ना वो धीमा करें, लोग जरा डिमांड्स अपनी कम करें. डिमांड्स कम करेंगे तो जरा इम्पोर्ट्स भी कम होनी शुरू होंगी एंड ऑल, जरा सा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में आएगा और ये सारी बातें. विच इज वाई मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसका पाकिस्तान रुपी में एक, जाहिर है पाकिस्तान रुपी इज गोइंग टू बिकम एक्सपेंसिव नाउ बिकॉज द इंटरेस्ट रेट हैज गॉन अप. सो व्हेन समथिंग बिकम्स एक्सपेंसिव, उसकी वैल्यू जो है, जाहिर है पीकेआर पे जो है एक इसकी वैल्यू जो है वो कम होती हुई आज हमें नजर आ सकती है. लेकिन जाहिर है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट आई थिंक पीकेआर तो नीचे जाना ही जाना है. तो ये है भाई, अब सिचुएशन काफी दिलचस्प हम मरहले में दाखिल हो गए. एक चीज जो बड़ी क्लियर हो गई है और वो ये हो गई है कि ये जो इंटरेस्ट रेट का इजाफा और ये जो पिछले चंद दिनों में चीजें डेवलप हुई हैं, जो हमारी शौकत तरीन डॉक्टराइन थी ना, वो तो फिलहाल इस वक्त चिल कर सकती है बिल्कुल, ठीक है. वी आर बैक टू स्क्वायर वन. ये 6-7 महीने एफर्ट्स करने के बाद, ये सारी करने के बाद हमें ये अंदाजा हुआ कि यार नो, दिस शौकत तरीन डॉक्टराइन इज नॉट वर्किंग नाउ. ये हमारी इकोनॉमी को उसने ओवर हीट कर दिया. आई होप खान साहब भी ये बात समझ गए हों और शायद उनके जो है ना वो रात सोने से पहले उनके जहन में ख्याल आया कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद. आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ. सो दैट्स द थिंग गाइस, दैट्स इट अबाउट द इंटरेस्ट रेट. सो एवरीथिंग इज गोइंग टू गो अप नाउ. अगर आपके पास गाड़ी का लोन है, आपकी एनिवर्सरी डेट, जब तक एनिवर्सरी डेट नहीं आती, यानी जो आपकी रिन्यूअल लोन की रिन्यूअल डेट जब तक वो नहीं आती, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अभी उसको बढ़ने का जो है ना वो कोई चांस नहीं है. लेकिन जो आपकी एनिवर्सरी डेट अगर आने वाली है अभी, तो फिर आपकी मंथली पेमेंट में, रीपेमेंट में इजाफा होगा. आपका अगर मॉर्गेज का लोन है तो फिर उसमें भी एनिवर्सरी डेट में बढ़ने का इजाफा होगा. डिपेंड ये करता है कि आपकी गाड़ी की लोन की पेमेंट या आपकी मॉर्गेज, मॉर्गेज की पेमेंट अमूमन एनुअली रीप्राइस हो रही होती है. लेकिन गाड़ी में मुझे पता है कि कुछ बैंकों ने पिछले चंद सालों में शरारतें करना शुरू कर दी और वो 6 महीने में आपकी जो इंटरेस्ट रेट है या जो आपकी मार्कअप पेमेंट है उसको वो रिन्यू कर रहे होते हैं उस वक्त के बेंच मार्क के साथ. सो जरा चेक कर लीजिएगा आप लोग भी कि आपकी रीपेमेंट डेट कब. आपको ये हमारी इंडिविजुअल लेवल पे जो है ना ये चीज़ ये हमने जो है वो ये फर्क पड़ सकता है हम लोगों को, जिन लोगों ने लोन्स लिए हुए हैं. क्रेडिट कार्ड और डेबिट, वो अपना क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट रेट इतना होता है उनको, तो 1-2% से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. लेकिन ऑटोज और मॉर्गेज वाले जो है ना उनको जरा थोड़ा सा इस चीज़ पे जो है ना वो फर्क पड़ेगा और थोड़ा सा उनको ख्याल करना पड़ेगा इन चीज़ों का. सो या आई थिंक वी आर सॉर्ट ऑफ हमें अंदाजा ये हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में देयर आर सम स्ट्रक्चरल इश्यूज. ओके, वी आर अ हाई इन्फ्लेशन हाई इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली. उसके पीछे हमारी अपनी हरकतें हैं, ये नहीं कि अल्लामिया ने बनाया ऐसा है कि भाई ये मुल्क में हाई इन्फ्लेशन ही रहेगा. नो, हमें ये देखने की जरूरत है कि वो क्या हमारे यहाँ इशूज़ हैं, वो क्या पंगे हैं, वो क्या लफड़े हैं हमारे यहाँ, वो क्या सियासी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हम जो है ना वो सियासी तौर से मकबूल फैसले करते हैं और गैर मकबूल फैसले लेने से हम डरते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का ना ये चीज़ फिक्स नहीं हो पा रही. आप पाकिस्तान के पियर कंट्रीज के साथ उठा लें, हिस्टोरिकली उठा लें, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगी और पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा. उसकी वजह ज़ाहिर है फिर मैं वो इसी बात पर आ जाता हूँ कि ये हमारी गलत प्रायोरिटीज हैं और ये सारी चीज़ें, इसे कौन फिक्स करेगा ये हमें पता नहीं. अभी हमें ऐसा लग ही रहा था कि ये जो हुकूमत है ये स्ट्रक्चरली बहुत सारी चीज़ें फिक्स करने की कोशिश कर रही है. लेकिन पिछले 6-7 महीने में खासतौर पर शौकत तरीन साहब का टाइम था, इसमें थोड़ा सा हमारे ख्यालात को जो है वो धचका जरूर लगा था. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से वी आर गोइंग बैक टू डॉक्टर हफीज शेख्स डेज. सो या लेट्स सी, दैट्स द थिंग. या अब जो है वो क्या हो गया जी, वक्त आ गया आप लोगों से जान लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच गाइज फॉर ट्यूनिंग इन. आज जरा लिसनरशिप कम थी, मैंने जरा मैसेजेस वगैरह भी शामिल नहीं किया. आई एम सो सॉरी फॉर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ गुड मैसेजेस. आप प्लीज कॉल कर सकते हैं मुझे आज हमारा शो भी ज्यादा सुना नहीं जा रहा आप कंट्री में. इनफैक्ट हमारा शो इस वक्त सिर्फ कराची में फिजिकल रेडियो पे सुना जा सकता है. देयर इज सच अ बिग इंटरनेट इशू टुडे हियर इन द एरिया दैट वी आर सिटिंग इन. मैंने रीजन उसकी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, इसकी वजह से. बाकी सारे कंट्री में तो लोग समझ रहे हैं शो हो ही नहीं रहा है, लेकिन खैर जिसको मैं बता सकता हूँ मैंने बता दिया. सो आई कैच यू गाइस टुमारो मॉर्निंग, विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे एंड वीक अहेड. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.